नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत को विकास के साथ साथ विरासत को संजोकर आगे बढ़ना चाहिए। राष्ट्र से औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलने का आह्वान किया। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड ओडिशा में 35 मिलियन टन की संयुक्त क्षमता वाली दो नई कोयला खदानें खोलेगा। अमेरिका ने कनाडा के साथ व्यापार वार्ता रोकी, उस पर नए शुल्क की घोषणा जल्द होगी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा, 12 दिन के इसराइल ईरान युद्ध के बाद खाड़ी क्षेत्र में विकिरण का स्तर सामान्य है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी और तन्वी शर्मा US ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची। और अंडर 19 क्रिकेट में भारत ने पहले एक दिवसीय मैच में इंग्लैंड को 6 रन से हराया। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपने विचारों, दर्शन और ज्ञान के कारण ही हजारों वर्षों से शाश्वत बना हुआ है। आज नई दिल्ली में प्रख्यात जैन संत आचार्य विद्यानंद जी महाराज की 100वीं जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे प्राचीन जीवंत सभ्यता है और इस शाश्वत दर्शन का स्रोत देश के ऋषियों, संतों और आचार्यों में निहित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आचार्य विद्यानंद मुनि इस प्राचीन भारतीय परंपरा के आधुनिक प्रकाश स्तंभ हैं। उन्होंने कहा कि आचार्य श्री विद्यानंद जी ने अपने जीवन को केवल आध्यात्मिक साधना तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे समाज और संस्कृति के पुनर्निर्माण का एक सशक्त माध्यम भी बनाया।
जिस दिव्य आत्मा की वाणी को, उनके वचनों को हम जीवन भर गुरु वाक्य मानकर उनसे सीखते हैं, जिनसे हमारे हृदय भावात्मक रूप से जुड़ रहे हैं, उनके बारे में कुछ भी बोलना हमें भावुक कर देता है। मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि श्री विद्यानंद जी मुनिराज के बारे में बोलने की जगह काश हमें आज भी उन्हें सुनने का सौभाग्य मिलता। ऐसी महान विभूति की जीवन यात्रा को शब्दों में समेटना आसान नहीं है।
श्री मोदी ने कहा कि इसी संकल्प को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के सांस्कृतिक धरोहरों और तीर्थ स्थलों का भी विकास कर रही है। प्रधानमंत्री ने देश को औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त करने पर भी जोर दिया।
हम भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज करने का अभियान भी चला रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में जैन धर्म ग्रंथों और आचार्यों से जुड़ी पांडुलिपियां शामिल है। अब हम हायर एजुकेशन में भी मातृभाषा को बढ़ावा देते हैं और इसलिए मैंने लाल किले से कहा है, हमें देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलानी है। हमें विकास और विरासत को एक साथ लेकर आगे बढ़ना है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सेवा और मानवता के प्रति समर्पित देश है। उन्होंने कहा कि विश्व में जब हजारों वर्षों तक हिंसा को हिंसा से शांत करने के प्रयास हो रहे थे, तब भारत ने विश्व को अहिंसा की शक्ति का बोध कराया। प्रधानमंत्री ने 9 संकल्पों पर भी जोर दिया।
मैं उन 9 संकल्पों को फिर से आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। पहला संकल्प पानी बचाने का है। दूसरा संकल्प एक पेड़ माँ के नाम। तीसरा संकल्प स्वच्छता का। चौथा संकल्प वोकल फॉर लोकल। पांचवा संकल्प देश का दर्शन। छठा संकल्प नेचुरल फार्मिंग अपनाने का। सातवां संकल्प हेल्दी लाइफस्टाइल का। आठवां संकल्प खेल और योग दोनों को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना है। नवा संकल्प गरीब की मदद करना। हम इन 9 संकल्पों पर काम करेंगे तो आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज जी को और उनकी शिक्षाओं को भी ज्यादा सशक्त करेंगे।
इस अवसर पर विशेष डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज का जीवन दर्शन आज भी प्रासंगिक है।
और एक ऐसे महत्वपूर्ण समय में अब आज हम सब एकत्रित हुए जब मानव को अपने भीतर भी, परिवार में भी, समाज में भी और राष्ट्रों के बीच में आपस में जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस जिस तरह का है, ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में आचार्य श्री का दर्शन आज के समय में और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है।
इस कार्यक्रम के साथ ही एक वर्ष तक चलने वाले राष्ट्रीय श्रद्धांजलि समारोह की औपचारिक शुरुआत हो गई है। इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्र सरकार द्वारा भगवान महावीर अहिंसा भारती ट्रस्ट के सहयोग से किया जा रहा है। आचार्य विद्यानंद जी महाराज प्रतिष्ठित जैन आध्यात्मिक गुरु और समाज सुधारक थे। इस दौरान देश भर में सांस्कृतिक, साहित्यिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कोल इंडिया की सहायक कंपनी महानदी कोलफील्ड लिमिटेड MCL ओडिशा में 35 मिलियन टन की संयुक्त क्षमता वाली दो नई कोयला खदानें खोलेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि MCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक उदय ए कावले ने ओडिशा के संबलपुर में कंपनी के मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी।
MCL के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक सुभद्रा खदान से प्रतिवर्ष 25 मिलियन टन कोयला उत्पादन होने वाला है। बालभद्र खदान से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक सालाना 10 मिलियन टन उत्पादन होने की उम्मीद है। श्री कावले ने कहा कि ये नई खदानें कोयला उत्पादन बढ़ाने और कोयले की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए MCL की दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है। दोनों खदानें ओडिशा के अंगुल जिले के तालचेर कोयला क्षेत्र में स्थित होंगी, जो एक महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक क्षेत्र है। MCL पहले से ही 18 खदानों का संचालन करता है, जिनमें 15 ओपन कास्ट और 3 भूमिगत खदानें हैं। इनमें भुवनेश्वरी, जगन्नाथ, हिंगुला, लिंगराज और तालचेर शामिल है। संबलपुर से अक्षित कुमार वैद्यान की रिपोर्ट के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार।
पश्चिम बंगाल पुलिस ने कोलकाता के लॉ कॉलेज में कथित दुष्कर्म मामले में आज एक सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार किया है। उसे आज अदालत में पेश किया जाएगा। इससे पहले कोलकाता पुलिस ने कॉलेज के एक पूर्व छात्र सहित 3 छात्रों को गिरफ्तार किया था। खबरों के अनुसार अभियुक्त पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हैं। तीनों को मंगलवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले के खिलाफ विपक्षी दलों ने आज कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कोलकाता के लॉ कॉलेज में दुष्कर्म की भयावह घटना से पूरा देश दुखी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कनाडा के साथ अब कोई व्यापार वार्ता नहीं होगी और जल्द ही उस पर नए शुल्क लगाए जाएंगे। श्री ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ट्रूथ सोशल पर कहा कि कनाडा द्वारा तकनीकी कंपनियों पर लगाए गए अत्यधिक डिजिटल सेवा कर के कारण वार्ता समाप्त की गई है। इस वर्ष के शुरू में श्री ट्रंप ने और अधिक बल का उपयोग कर कनाडा को अमेरिका से में मिलाने की धमकी दी थी। इसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे पर शुल्क लगाए। कनाडा का डिजिटल सेवा पर 3% कर अमेरिका के साथ उसके संबंधों में एक अड़चन बना हुआ है। ये कर सोमवार से लागू होगा, लेकिन इसे 2022 से प्रभावी बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रॉसी ने कहा है कि इसराइल और ईरान के बीच 12 दिनों के संघर्ष के बाद खाड़ी क्षेत्र में विकिरण का स्तर सामान्य बना हुआ है। संघर्ष में ईरान के कई परमाणु संयंत्रों को अत्यधिक नुकसान पहुंचा है। श्री ग्रॉसी ने बताया कि एजेंसी को अंतर्राष्ट्रीय विकिरण निगरानी प्रणाली के क्षेत्रीय डाटा की रिपोर्ट से ये जानकारी मिली है। उनका कहना है कि 48 देशों के इस नेटवर्क ने किसी भी क्षतिग्रस्त परमाणु ऊर्जा रिएक्टर से महत्वपूर्ण रेडियोधर्मी उत्सर्जन का पता लगाया होगा। श्री ग्रॉसी ने व्यापक सुरक्षा समझौते के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों को ईरान में अपनी सत्यापन गतिविधियों को जारी रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया। ईरान में आज इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के कमांडरों, सैनिकों, परमाणु वैज्ञानिकों और नागरिकों के लिए राजकीय अंतिम संस्कार समारोह आयोजित किया गया, जो इसराइल के साथ 12 दिवसीय युद्ध के दौरान मारा गए थे। युद्ध के दौरान मारे गए 60 ईरानियों के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए राजधानी तेहरान में आजादी स्ट्रीट पर हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News Hindi फॉलो कर सकते हैं। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष सट्टी और तन्वी शर्मा अपने अपने वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में तन्वी ने मलेशिया की लेतश्ना करूपथेवन को हराया। पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में आयुष ने चीनी ताइपे के कुओ क्वान लिन को पराजित किया। सेमीफाइनल में तन्वी का मुकाबला यूक्रेन की पोलिना बोहरोवा से जबकि आयुष का चीनी ताइपे के चो तिएन चेन से होगा। पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में भारत के ए हरिहरन और रूबेन कुमार की भारतीय जोड़ी हार गई। उधर अंडर क्रिकेट में भारत ने पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया। हो के काउंटी ग्राउंड में कल पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान इंग्लैंड की पूरी टीम 174 रन पर आउट हो गई। जवाब में भारतीय टीम ने 24वें ओवर में 6 विकेट पर 175 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 5 20-20 मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज ब्रिटेन के ट्रेंट ब्रिज में होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। उधर FIH प्रो महिला हॉकी लीग में आज बर्लिन में भारत का सामना चीन से होगा। मैच शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा। अंक तालिका में चीन चौथे जबकि भारत अंतिम स्थान पर है। उधर भारत ने एशियाई स्नूकर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत का अगला मुकाबला हांगकांग और बहरीन के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। इस बीच अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ 14 जुलाई को नई दिल्ली के फुटबॉल हाउस में एक विश्लेषण कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारतीय फुटबॉल में प्रशिक्षकों और विश्लेषकों की कार्य कुशलता और विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देना है। इच्छुक प्रतिभागी महासंघ की वेबसाइट पर पंजीकरण लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 6 जुलाई है।
श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन द्वारा आज सुबह रथ यात्रा फिर से शुरू करने के बाद भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहनों के रथ गुंडीचा मंदिर की ओर ग्रांड रोड से आगे बढ़ने लगे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भगवान बलभद्र का रथ तालध्वज और देवी सुभद्रा का दर्प दलन गुंडीचा मंदिर के सामने पहुंच गया, जबकि भगवान जगन्नाथ का रथ नंदीघोष ग्रांड रोड के साथ अपने गंतव्य के करीब पहुंच रहा है।
कल सूर्यास्त से पहले कोई भी रथ गुंडीचा मंदिर नहीं पहुंचा, इसलिए भक्तों को आज रथ खींचने का दुर्लभ अवसर मिला। उन्हें रात भर अपने अपने रथों पर विराजमान देवताओं के दिव्य दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज रथ यात्रा के फिर से शुरू होने पर भक्तों ने घंटियों, शंखों और हरि बोल के जयकारों के बीच राजसी रथों को खींचा। कल रथ यात्रा के दौरान कुछ अज्ञात कारणों से रथों को खींचने का काम बीच में ही रोक दिया गया था। राज्य सरकार ने यात्रा में किसी भी दुर्घटना को रोकने की पूरी तैयारी की है। देवता अब गुंडीचा मंदिर में 9 दिनों के प्रवास पर रहेंगे और फिर 5 जुलाई को बहुड़ा यात्रा के दौरान उन्हीं रथों पर सवार होकर श्री जगन्नाथ मंदिर लौटेंगे। पुरी से SN पटनायक की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। देश के विकास को आकार देने में उनकी भूमिका को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनके प्रभावी नेतृत्व के लिए राष्ट्र उनका आभारी है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी बुद्धि और ज्ञान तथा अच्छे स्वभाव का आज भी व्यापक रूप से प्रशंसा की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 123वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार देश के उत्तर, पश्चिम, मध्यवर्ती, पूर्वी और पूर्वोत्तर हिस्सों में अगले 7 दिन में बहुत तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। गुजरात, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में आज तेज वर्षा का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर में अगले 2-3 दिन मूसलाधार वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत को विकास के साथ साथ विरासत को संजोकर आगे बढ़ाना चाहिए। श्री मोदी ने राष्ट्र से औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलने का आह्वान किया। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड ओडिशा में 35 मिलियन टन की संयुक्त क्षमता वाली 2 नई कोयला खदान खोलेगा। अमेरिका ने कनाडा के साथ व्यापार वार्ता रोकी, उस पर नए शुल्क की घोषणा जल्द होगी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा, 12 दिन के इसराइल ईरान युद्ध के बाद खाड़ी क्षेत्र में विकिरण का स्तर सामान्य है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी और तन्वी शर्मा US ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।